ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தத்துவ ஜிக்யாசு சஜ்ஜனோ ஹம் லோக் வைதிக் சாந்தி பாட் கே ஊபர் विचार कर रहे हैं। दश शांति मंत्रों में प्रथम दो का विचार हम कर चुके संक्षेप से, और तैत्तिरीय उपनिषदोक्त तृतीय शांति पाठ का विचार चल रहा है। ॐ यश्चन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा करणाभ्याम् भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय तो ये शांति पाठ में जैसे कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसमें ओमकार की प्रार्थना है। स्वाध्याय श्रवण करते समय स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ओमकार से प्रार्थना की गई है, क्योंकि जब स्मरण ही नहीं रहेगा तो श्रुत ग्रंथ में क्या कहा वो आप जो है बाद में मनन किसका करेंगे। इसलिए स्मरण शक्ति चाहिए, प्रज्ञा बल चाहिए, मेधा सिद्धि चाहिए, इसलिए प्रणव से यहां पर प्रार्थना की गई है। कहा गया स मेधया स्पृणोतु, तृतीय पंक्ति में जो कहा ने स मेधया स्पृणोतु, स से जो ओमकार है वो ओमकार मेरे को मेधया यानी मेधा से, प्रज्ञा से, स्पृणोतु यानी प्रीणयतु, प्रज्ञा बल प्रदान करे, प्रज्ञा बल की प्रार्थना की गई। देखिए व्यवहार में भी हमको प्रज्ञा बल चाहिए, परमार्थ में भी प्रज्ञा बल की आवश्यकता है। अब यहां पर जो प्रज्ञा बल मांगा जा रहा है वो श्रुत ग्रंथ का स्मरण के लिए, उपनिषद का श्रवण कर रहे हैं और हमको स्मरण न रहे तो वो लाभकारी नहीं होता है। कैसे ओमकार से प्रार्थना की गई, वो ओमकार कैसा है, देखिए जिसकी स्तुति करते हैं और जिससे कुछ प्राप्त करना है तो उसमें जो चीजें प्राप्त करनी है वो होनी चाहिए ना। तो ओमकार हमको प्रज्ञा बल क्यों दे, तो इसलिए कि हमको ये उपनिषद का श्रवण करना और ओमकार है वो छंदसाम ऋषभ है, छंद से युक्त जो वेद है वो वेद में वो ऋषभ है यानी कि श्रेष्ठ है, इसलिए जिसका वेद में प्रतिपादन है उससे इसलिए प्रार्थना की गई कि वेदार्थ हमको स्मरण रहे। और जो विश्वरूप है, विश्व ही जिसका रूप है ऐसा जो ओंकार है वो हमको मेधा से संपन्न करे, प्रज्ञा बल से संपन्न करे। और ओंकार की उत्पत्ति भी बताइए कि वो किससे उत्पन्न है, तो कहा छंदोभ्य अधि अमृतात्। अमृत यानी कि जो नित्य है यानी कि प्रलय पर्यंत रहते हैं, अवांतर प्रलय में वेद का नाश नहीं होता है इसलिए नित्य कहा। ऐसे जो वेद है उस वेद से वो बाभू वह जो प्रतिपाद्य है, इसलिए इतनी विशेषताओं से युक्त ओमकार है। अमृत स्वरूप वेद से वो उत्पन्न होते हैं, या अथवा ऐसा समझे कि अमृत स्वरूप वेद में ही उनका वर्णन है। ऐसा जो ओमकार और जो विश्वरूप है और जो ऋषभ है वो मेरे को मेधा से संपन्न करे। तो ओमकार के विशेषणों को याद रखें, एक तो कहा कि वो ओमकार ऋषभ है, एक हुआ। दूसरा विशेषण हुआ कि वो ओमकार विश्व रूप है, तीसरा विशेषण यह हुआ कि जो वेद से प्रतिपाद्य है या उत्पन्न है। और एक विशेषण ले लो इंद्र, स मेन्द्रो ऐसा ना, तो मेन्द्रो ये जो शब्द है उनका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा कि स मा इंद्र, इंद्र जो इंद्रो ओकार सुनाई पड़ रहा है ना, फिर वो अपने मूल रूप विसर्ग में आ जाएंगे। तो मा इंद्र ऐसा दो शब्द जो है उसमें से निकलेगा, मेन्द्र में से मा इंद्र। तो मां का तो अर्थ है वो मेरे को, स माने वह ओंकार, मां यानी मेरे को मेधा से संपन्न करे, तो इंद्र शब्द अलग निकल जाएगा। तो वो इंद्र शब्द है वो भी ओंकार का ही विशेषण है। पूछा जाए कि ओमकार कैसा है, पुनः किदृश ओमकार, तो कहा इंद्र, जो इंद्र है। आप कहेंगे कि ओमकार इंद्र थोड़ा न, इंद्र तो एक देवता विशेष है, जो हमारे हाथ के देवता है व्यष्टि रूप से कहे तो, और समष्टि रूप से कहे तो देवताओं के अधिपति वो इंद्र। यहां ओमकार इंद्र क्यों है, ओमकार के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग किया, विशेषण यहां पर लगाया, तो देखिए जो इंद्र के अंदर जो गुण है वही गुण ओमकार के अंदर है। इसलिए देखिए इंद्र है वो हमारे सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। हमको जो पदार्थ चाहिए और खास करके इहलोक के जो पदार्थ चाहिए, तो हम यदि इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो वो हमको वांछित फल प्रदान कर देते हैं। देखिए ये बात तो निश्चित है कि संसार के अंदर जो भी लाभ है वो सब लाभ तभी हो सकते हैं कि देवराज इंद्र वृष्टि करे। यदि वृष्टि न हो तो कल्पना कीजिए क्या हो सकता है। वृष्टि के बिना अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, और अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि, सभी भूतों की उत्पत्ति किससे, अन्न से। विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन वो अन्न का विकल्प नहीं ढूंढ सकता है। ढूंढ सकता है बदल, आज तक ढूंढ पाया विज्ञान अन्न का विकल्प नहीं, और ढूंढ भी नहीं सकेगा, संभव भी नहीं है। भूतों की उत्पत्ति अन्न से ही है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से है। वृष्टि नहीं होगी तो पुष्कर अन्न उत्पन्न नहीं होगा। देखिए कभी कल्पना की कि हमारे पास खेत है, 10 बीघे का खेत है, उसमें आपने यदि धान्य बो दिया 1 बीघे में से 10 मन धान्य हुआ, तो 10 बीघा का कर रखा है तो कितना हुआ, 100 मन। और वो मुश्किल से 3 और 4 महीने के अंदर ही वो उस पाक हो जाता है, 4 महीने। तो बताइए 4 महीने में आपने वो खेत में से 100 मन धान्य उत्पन्न कर दिया, और ये कोई 1 साल से थोड़े ना कर रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी से उसमें से ये वो तैयार है। अब 1 साल में 100 मन, 10 साल का हिसाब लगाइए तो कितना होगा, 1000 मन होगा। अब 1000 मन खेत में से मिट्टी निकाल लीजिए, तो खेत में खड्डा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना खेत। लेकिन आप अन्न बोते जा रहे, धान्य बोते जा रहे, इसमें से ले रहे फसल के रूप में, लेकिन खेत कम नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बरसा हुआ जो जल है ना, वही अन्न का रूप धारण कर लेता है। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे? जल से है। अद्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति है। और पृथ्वी और अन्न वो एक ही बात है, इसलिए जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। ऐसे जल यानी कि बारिश ना हो तो अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी। अच्छा, बारिश कब हो? इंद्र की प्रसन्नता से। इंद्र प्रसन्न नहीं हो तो आप चाहे जितना उपाय कर लो, वर्षा ही नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि इंद्र कोई ऐसे अपने आप स्वच्छंदता से प्रसन्न होते हैं या कुछ वश होकर के प्रसन्न होते? तो कहते हैं यज्ञ के द्वारा उनको संतुष्ट किया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ में देवताओं को उद्देश्य करके हव्य का त्याग किया जाता है तो उस हव्य से देवता तृप्त होते हैं, और तृप्त होकर के वो बारिश करते हैं। इस तरह से ये पूरा चक्र ऐसे परंपरा से इंद्र है, वो सभी कामों को और इच्छाओं को वो पूर्ण करते। और ऐसे इसी क्रम से यदि बारिश और अन्न उत्पन्न हो तो उसी के फलस्वरूप संसार के अंदर जो भी काम्य पदार्थ है वो सभी काम्य पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंद्र है वो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले है। कर्म के द्वारा यदि हम कर्म करते हैं तो देवता क्या होते? प्रसन्न होते हैं। भगवान ने गीता में बताया, देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। देवताओं को हम हवि प्रदान करें, भोग प्रदान करें, देवताओं के लिए जैसे कहते हैं ना हम, अब वो जो है परंपरा क्षीण होती हुई चली गई और कहते हैं क्या कर रहे हैं, तो देवताओं को भोग लगाया। ठीक है, वो भी भावनात्मक है। मंदिर में हम थाल लगाते हैं ना भोजन का, वो उसी का एक प्रतिरूप है। कई लोग कहते हैं कि यदि भगवान उसको ग्रहण कर लेते तो कोई भोजन ही नहीं कराता। आप लोगों का क्या कहना है? यदि भगवान ग्रहण करते तो दूसरे दिन आप नहीं देते? देते बिल्कुल। क्यों? और देते। अब यदि देवताओं को दे ही देना है तो देवताओं जिस रूप से ग्रहण करते हैं उसी रूप से देना चाहिए। केवल अपने मंदिर में जो है भोग लगाए इतना ही नहीं, जैसे किसी व्यक्ति को आप भोजन के लिए बुलाए, बिठा दिए और थाल रख दिया सजा करके, फिर कुछ बोले नहीं और आपने उठा करके ले लिया कि भोजन कर लिया, तो ठीक है मैं ले लेता हूं। अब लेकर के अंदर चले गए, अब उठो, क्या होगा बताइए? तृप्ति हुई क्या? नहीं। तो ऐसे ही रोज करते रहेंगे तो देवता कमजोर हो जाएंगे। कमजोर यानी कि अपनी इंद्रिया है वो कमजोर हो जाएगी। तो फिर ये वेदांत का श्रवण होगा? नहीं होगा। इसलिए देवताओं को जिस प्रकार से वो हवि पहुंचता है उस प्रक्रिया से हमको देना चाहिए, वो प्रक्रिया है यज्ञ। यज्ञ के अंदर हम हवि का होम करते, देवतोद्देशेन हव्य त्याग उसको कहते यज्ञ। देवताओं को उद्देश्य करके हव्य का त्याग किया जाए उसको कहते हैं यज्ञ। आजकल के जो पढ़े हुए लोग हैं वो जो है लोगों को कहते हैं ये तो मानो अन्न घृत तेल आदि का जो है व्यर्थ व्यय है, ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं इससे तो गरीबों को खिलाओ, क्यों अग्नि में डाल दिया जाता है, कहते हैं अग्नि में डालने से तो व्यर्थ ही जाता है। अब गरीबों को खिला लो तो क्या होगा, गरीबों को खिलाने से ही सफल होगा क्या, उसका भी शुभ में क्या हाल होगा। लौकिक लाभ और प्रत्यक्ष लाभ नहीं देखा जाता है, यहां तो अप्रत्यक्ष लाभ है। यदि आप यज्ञ में हव्य का त्याग करते हैं तो वो जो हव्य है वो अपनी स्थूलता को समाप्त करते हुए सूक्ष्म रूप धारण करते हुए वो सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। और जैसे कि अपनी वहां प्रक्रिया बताई, उस प्रक्रिया से वो वृष्टि के लिए वो अनुकूल वातावरण बन जाता है। उससे मनुस्मृतिकार कहते हैं अग्नौ प्रास्ताहुति दत्वा आदित्यमुपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टि वृष्टिः अन्नम ततः प्रजा। ये है अग्नि के अंदर हम आहुति देते हैं तो वो जो आहुति है वो ये नहीं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अग्नि का सामर्थ्य इतना ही है कि वो पदार्थ की स्थूलता का नाश करता है, पदार्थ का नहीं, वो स्थूलता का नाश हो जाता है तो सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, वो आदित्य को प्राप्त करते हो। आदित्य जायते वृष्टि ही, और आदित्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इस तरह से इहलोक के जो भी भोग्य पदार्थ है उसमें ये देवता कारण है, और देवताओं के जो राजा है उसको इंद्र कहते हैं, इसलिए इंद्र को सर्व कामेशः कहते हैं, सर्व कामनाओं की पूर्ति इंद्र से होती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये ओमकार के लिए भी यहां पर इंद्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि ओमकार भी सर्व कामेशः है, सर्व कामेशः परमेश्वरः ओमकार। यहां पर अर्थ यह हुआ कि जो इंद्र है स मा मेधया स्पृणोतु, जो इंद्र रूप ओमकार है वो मेरे को मेधा से संपन्न करे। तो देखिए जो सर्व कामेश है, सर्व कामनाओं के काम के ईश यानी कि स्वामी, सर्व काम यानी कि इच्छा की पूर्ति उनके अधीन है, उनके वो स्वामी है। तो स्वामी होने से स्वामी कहते हैं जो स्वतंत्र है, जिसको लेन देन करने में किसी से पूछना नहीं पड़ता है, उनको कहते हैं स्वामी। व्यवहार में क्या होता है, पति को पूछना पड़ता है, इतना पत्नी से और पत्नी को, ठीक है, वो तो व्यवहार एक बात है, वो गलत नहीं है, किंतु इसमें जो है एक दूसरे का जो है सापेक्षत्व रहता है, किंतु ये ओंकार है वो सर्व कामनाओं को देने में समर्थ है। आप कहेंगे कि ओंकार से क्या यहां पर कोई जड़ वर्ण ही लिया जाए, नहीं, ओंकार का लक्ष्य कौन है? परमात्मा है। तो ओंकार से प्रार्थना का अभिप्राय है परमेश्वर से प्रार्थना। तो परमेश्वर सब चीज देने में समर्थ है कि नहीं, सब कामनाओं की पूर्ति करने के लिए समर्थ है कि नहीं? काम की पूर्ति यानी फल का प्रदान करना, तो फल देने वाले कौन है? परमेश्वर है। हम जो भी कर्म करते हैं तो परमेश्वर को ख्याल रहता है, पता रहता है। हम ये कभी न समझे कि हम जो कर रहे हैं वो कोई देख नहीं रहा, परमेश्वर देख रहा है।